ये एक छोटी सी शेयरिंग फेसबुक के थ्रू किसी ने भेजी थी। ये कल का जो सेशन था उसके जवाब में लिखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रेटफुल सेशन, आई हैव 4 किड्स अंडर 7 इयर्स, यानी 7 साल की उम्र के अंदर अंदर के 4 बच्चे हैं। उर्दू में बताती हूँ, ये कहती हैं कि आपकी ये टिप के दे दो अल्लाह और देगा, इस एक टिप ने मेरे बच्चों के सारे मसले हल कर दिए। क्योंकि घर में सारा वक्त यही मुकदमे चल रहे होते हैं ना कि उसने मेरा ये लिया, उसने ये दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग का जरिया भी बनती हैं, और बच्चों को थोड़ा सा अगर हम सिखा दें चीजों को कैसे लेना है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बहस करते हैं जितनी हम करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले वाक्य पे, एक और माँ को देखिए। और याद रखिये कि हमारा कोर्स क्या है कि नेक माओ का मिसाली किरदार। तो हम बातें तो जितनी भी कर लें, लेकिन इन नेक खवातीन जिनकी कहानियां हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो हम अपनी जिंदगी में एप्लीकेशन ला सकते हैं, ये हमें ज्यादा फायदा देगी। तो हर वाक्य को सुनते वक्त अपना तकाबुल जरूर किया करें कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूं, और अगर मैं ऐसी हूं तो अल्लाह का शुक्र है। अभी अगला वाक्य है पेज नंबर 52 पे, 7 नंबर स्टोरी है, फातिमा रदी अल्लाह अन्हा का जज्बे ईसार और औलाद की तरबियत। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी अपनी बच्चे की तरबियत कैसे करती थी। हसन बिन अली से रिवायत है कि एक दिन एक वक्त के फाके के बाद हम सब घर वालों को खाना मुयसर आया। सोचिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत घराना होगा अल्लाह के नबी के बच्चे, हाँ, आपकी नस्ल, और वहाँ खाना एक दिन के फाके के बाद। पहले तो खुद से साथ ही पूछिए कि क्या कभी मेरे भी घर में ऐसा हुआ कि एक दिन का फाका हो। हम अपने घर ना पकाएं, बाहर से हम इतना उधर खाते पीते रहते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे घर कुछ पका ही नहीं। तो पेट में तो एक ही में जाना था ना, आप ना खाएं आपकी बहन पका दे, एक ही बात है ना। लेकिन बाज़ दफा हम इस तरह की चूके आदत नहीं डालते तो हमें फिर ऐसे वक्तों पे बच्चों से बहुत रिएक्शन शो होता है। तो ये कहते हैं कि एक दिन के फाके के बाद खाना आया, वालिदे मुहतरम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, हुसैन और मैं खाना खा चुके थे, जबकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ने भी खाना नहीं खाया था। वो खाना शुरू करने वाली थी कि घर के बैरूनी दरवाजे पर एक साइल ने आकर आवाज लगाई, अल्लाह के रसूल की बेटी, मैं दो वक्त से भूख का शिकार हूँ, इसलिए मुझे इस कदर खाना दे दीजिए जिससे मेरा पेट भर सके और वक्ती तौर पर भूख खत्म हो सके। ये सुनना था कि वालदा मुख्तरमा ने फौरन खाना छोड़ दिया और मुझे बुलाकर हुक्म दिया, हसन ये खाना ले जाकर साहिल को दे आओ। मैं तो एक वक्त के फाके का शिकार हूँ जबकि साहिल ने दो वक्त से खाना नहीं खाया, इसलिए ये इसका ज्यादा मुस्तहक है। इस रसूल की बेटी का हाल है जिसके पास अगर कोई साइल आता तो वो तमाम उम्महातुल मोमिनीन के हां से पता करवाते और साइल को कुछ न कुछ दे दिलाकर ही रुख्सत करते, खुद भूखे रह जाते लेकिन साइल की जरूरत को पूरा करते। है कोई बात इसमें जो हमें समझ ना आए? हम बहुत खा खा के भी बाज़ दफा अपनी सोचने की सलाहियत को खत्म कर देते हैं। तो इसमें से अमल की बात बस यही रख लीजिए कि कभी जान के भी फाका करें। एक तो होता है ना रोजे के साथ फाका, वो तो पता है कि इफ्तारी पे मजे मजे की चीजें मिल जानी है, पक जानी है और खाएंगे, और खुद नहीं खाएंगे तो मंगा लेंगे। लेकिन ये वो फाके हैं कि जिसमें घर में होता भी नहीं, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद भी दूसरे को दे देना ये सोचकर कि वो मुझसे ज्यादा भूखा है। आप अगर देखें कि माए ऐसी होंगी ना तो बच्चे ऐसे क्यों नहीं होंगे? आज अल्लाह की दी हुई नेमतें बहुत है हमारे घर में, हो सकता है हम इसको महसूस ही ना कर सके, लेकिन आप और मैं अगर इन सारी चीजों को अपने ऊपर लेकर सोचे, कोई ना कोई ऐसे हालात जरूर पैदा करें। बच्चों को तो नहीं पता ना आपके पास पैसे हैं कि नहीं, ये कह सकते हैं घर में नहीं है खाना, अल्टरनेट दीजिए। जो हर वक्त हर चीज अवेलेबल करके घरों की फ्रिजों को और पेंट्रीज को फिलअप करते ना, तो ये घर और स्टोर और इसी ग्रोसरी स्टोर का फर्क मिट जाता है। बस अब हमारे अपने घरों में जो चीजें होती हैं, फिर उसके बाद अंदर एक स्टोर भी होता है जिसमें फिर कुछ स्टॉक होता है, फिर उसके बाद एक बाहर भी स्टोर होता है, एक तहखाने में भी ठंडा रूम होता है कि जिसमें हम बहुत कुछ भरे होते हैं। बच्चों को पता है अगर इस फ्रिज में नहीं है तो बाहर की फ्रिज में जरूर कुछ होगा, इस फ्रीजर में कुछ भर गया तो खत्म हो गया। तो कभी कभी किसी ऐसी चीज को जिसको आप थोड़ा सा बच्चों को अहमियत दिलाना चाहिए उसको खत्म करें, एक वीक ना लाए। क्या हमारे घरों में आज के दौर में ये तसव्वुर है कि एक वीक ब्रेड ही ना आए तो नाश्ता हो जाए? क्या ब्रेड के बगैर नाश्ता नहीं हो सकता? घर की रोटी, सीरियल है, कितने अल्टरनेट्स हैं। लेकिन अमूमन देखा गया कि मसला ये भी नहीं है कि एक नाश्ता, बल्कि हर बच्चे का नाश्ता, हर एक अपने हिसाब से जो नाश्ता करना चाहे हम उसको वो अवेलेबल करना पसंद करते हैं। करके देखिए, इससे आप देखेंगे कि शुक्रगुजारी के जज्बे ज्यादा पैदा होंगे। जब एक चीज हर वक्त ही हमारे पास होती है तो उसकी कदर ही खो जाती है और हम सोचते हैं कि ये ऐसा होना ही था और ये होना हमारा हक है। लेकिन जब आप इन सारी चीजों को अपने ऊपर लेकर सोचते हैं कि नहीं, अल्लाह ने मुझे आज दी है तो ये क्यों दी है, बस इस देने और लेने के ऊपर अपनी नजरें रखिए, तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या होगा। और एक आखिरी बात करके आगे चलती हूँ कि हर वक्त पेट भरा रहना तो वो बातें नहीं समझ आती जो खाली पेट समझ आती। एनर्जी भी जितनी मिलती जाती है उतनी घरों में बच्चों की लड़ाइयां भी बहुत होती हैं और बाकी चीजें भी होती हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने बच्चों को मैनेज करना आ जाए, हम इतने ना उनके लाड देखें कि हजरत फातिमा का ये उसवा हम भूल ही जाएं। अगर आप चाहें ना तो इसमें से एक अपने लिए टिप बना लें इस बुक को पढ़ने की। हर कहानी में से कोई एक चीज अपने लिए नोट करें बाद में और उसको लिखकर अपनी किचन की फ्रिज पे या किचन के कोई ऐसी जगह पे जहां अक्सर आपकी नजर पड़ती है वहां लगा लें। आप एक चीज जरूर महसूस करेंगे कि इन नेक माओं के किरदार में बहुत बुनियादी किरदार जो था ना, दो चीजों में झलकता है, खाने पीने में एतदाल और जज्बा जिहाद और इस्लाम की खिदमत का शौक। मैं दुख के साथ कहूंगी कि अगर आज हम ये दोनों जुमले लिख के देखें, क्या आज की मां को बच्चे के खाने पीने पर कंट्रोल की फिक्र है? ये तो सबको है कि बच्चे क्या खाएं, लेकिन ये फिक्र है कि कम खाएं। ये नहीं कि कम है या वेट कम हो जाए, इसके लिए कम खिलाते हम, छान छान के खिलाएंगे, लेकिन इसलिए कम खिलाना ताकि इनके अंदर जज्बा शुक्र पैदा हो। और इसी के साथ दूसरी चीज, क्या मेरे दिल में ये तड़प है और क्या मैंने अपने बच्चों को ये दी है तड़प कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करूं। इसी कोर्स को अटेंड करने वाली एक माँ ने मेरे साथ शेयरिंग की कल, तो वो अपना बता रही थी कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो उसका खुलासा निकला है, वो हर दिन जाकर उसको अपने बच्चों के साथ शेयर कर रही है और सिर्फ दो ही दिन गुजरे हैं तो घर का माहौल बहुत बदल गया कि अब बच्चे इस तरह से माँ के साथ मोहब्बत महसूस करते हैं, दोस्ती महसूस करते हैं कि जैसे शायद पहले नहीं की थी। जैसे हम घर से जाते हैं तो इंतजार होता है ना कि घर जाएं कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा, उनको भी अब यही फीलिंग आती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो वाकई हमने अपने बच्चों को बहुत दूर किया अपने आप से, इनको करीब लेके आएंगे ना फिर इंशाल्लाह बाकी काम भी आसान होंगे। एक और साहबिया का किस्सा पढ़ते हैं, पेज 53 वाक्य नंबर 8 है। एक साहबिया का बेमिसाल शेवा है सब्र और रजा। अब आप इसको सुनते वक्त फिर अपने ऊपर लें। वाकया ये किनका है? ये वाकया भी उम्मे सुलेम रजी अल्लाह अन्हा का है। मुझे बड़ा से इनको मिलने का शौक आता है, जब भी इनकी कहानी पढ़ी और इनके बारे में पूरी कहानी भी पढ़ाई हुई है किसी जगह पे, तो मैं सोचती हूँ कि कितनी समझदार माएं थी। ना इन्होंने कोई डिग्रियां ली हुई थी, ना ये कॉलेजेस से पढ़ के आई थी, लेकिन ये कितनी अकलमंद थी इसकी दलील इस वाक्य में भी मिलेगी। ये कौन थी जो न सिर्फ एक बड़े मर्तबे और कदरों मंजिलत वाली सहाबिया रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह है, बल्कि इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला होने का शर्फ भी हासिल है। इनका नाम रुमैसा कुन्नियत उम्मे सुलैम थी और वो इसी नाम से ज्यादा मशहूर हो गई। खानदानी इज्जत और मर्तबत, जाती खूबी और शराफत की बिना पर आपका बहुत एहतराम किया जाता था, यानी आला नसब की थी। कोई ये भी ना सोचे कि ये वो लोग थे कि जो फॉरगॉटन थे और सोसाइटी में उनको कोई जानता नहीं था, बड़ी इज्जत वाली थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत दीन का आगाज किया तो उम्मे सुलैम दावत इस्लाम के इब्तदाई सालों में ही दौलत ईमान से शर्फ याब हो गई, यानी बिल्कुल शुरू के दिनों में मुसलमान होती हैं। आप इंतहाई इबादत गुजार होने के साथ साथ आलिमा और फाजिला सहाबिया होने का दर्जा भी रखती थी। ये याद रखिये कि अल्लाह के नबी के दौर में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, तो ये उन लोगों में से थी जो पढ़े लिखे लोग थे। उम्मे सुलैम नहायत साबिरा और मुस्तकिल मिजाज खातून थी। इनका पहला निकाह मालिक बिन नसर से हुआ। जब दावत इस्लाम का आगाज हुआ तो अमूमन यही होता था कि मर्द पहले मुसलमान होते थे, फिर इनकी तरगीब और तबलीग से इनके घर की औरतें या खानदान की औरतें भी ईमान ले आती, लेकिन यहाँ मामला इसके बिल्कुल बरक्स था। मुसअब बिन उमैर पहली बैत अकबा के बाद रसूलुल्लाह के हुक्म से दीन की दावत और तबलीग की गरज से यसरब, ये मदीना का पुराना नाम है और फिर बाद में इसको मदीना तो नबी कहने लगे, ये यसरब पहुंचे और आपने लोगों को दीन हक की तरफ बुलाया तो मालिक बिन नजर के घर में एक अजीब कैफियत पैदा हो गई। उम्मे सुलैम का शौहर मालिक बिन नजर न सिर्फ ये कि इस्लाम से नफरत का इजहार कर रहा था, बल्कि औरों को रोकने के साथ साथ अपनी बीवी और बेटे को ईमान न लाने का हुक्म दे रहा था। इमेजिन करें, अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में ऐसा कोई थ्रेट है कि शौहर दीन को पसंद नहीं करते बल्कि दीन से रोकते हैं, तो फिर आप उम्मे सुलैम की ये कहानी पढ़िए कि उन्होंने कैसे डील किया ऐसे शौहर को। جبکہ ام سلیم اپنے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑھتے ہی ایک عجیب پرلطف و پرسکون کیفیت سے سرشار ہو گئی تھی۔ ان کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ دعوت ضرور سچی، فطری اور ہر طرح کی خرابیوں سے پاک دعوت ہے۔ وہ نہ صرف خود ذہنی طور پر دین حق کی قائل ہو چکی تھی بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی میں رنگنا شروع کر دیا تھا جس میں وہ خود رنگ چکی تھی۔ یہاں ایک عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے کہ ہماری وہ بہنیں جن کو بھی اپنے شوہروں کی طرف سے صحیح نہیں رہنمائی مل رہی یا ان کو حالات سازگار نہیں ملتے، تو وہ شوہروں پہ نہیں بچوں پہ کام کریں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ عورت کی فورس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر بچے کے ساتھ عورت کے قدم جم جاتے ہیں گھر میں، تو اگر بچے بھی اسی مزاج کے ہوں گے جس کی بیوی ہے، تو شوہر کے لیے پھر ریزسٹ کرنا زیادہ دن ممکن نہیں رہے گا۔ ساتھ ساتھ اب ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ ان کا شوہر بھی دین حق کی طرف مائل ہو جائے۔ ام سلیم کا اصرار تھا کہ یہ نئی دعوت ہی فطری اور سچی دعوت ہے اور ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل بھی ہے، اس لیے ہمیں بہرحال اسلام قبول کرنا ہوگا۔ شوہر اور بیوی میں بات بڑھتے بڑھتے جھگڑا شروع ہو گیا جو بتدریج شدت اختیار کر گیا۔ مالک بن نظر نے ام سلیم کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو میں تم سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، یعنی تم سے الگ ہو جاؤں گا، سیپریشن اختیار کر لوں گا۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے درمیان تعلق قائم رہے تو پھر تمہیں اپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کرنی ہوگی، جس پر نہ صرف میں بلکہ لوگوں کی اکثریت عمل پیرا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ دھمکی کس کی ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے نا، طلاق کی دھمکی ہے کہ واپس آ جاؤ نہیں تو پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لیکن ام سلیم کے قلب و ذہن میں دین حق کی دعوت کا سودا اس حد تک سما چکا تھا کہ وہ دوبارہ شرک و کفر کی طرف پلٹنا ناممکن خیال کرتی تھی۔ چنانچہ ام سلیم باقاعدہ طور پر مسلمان ہو گئیں۔ اب ان کے سامنے دو ہی باتیں تھیں، یا یہ کہ ان کا شوہر بھی اسلام لے آئے یا یہ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ اب وہ قانون آ چکے تھے کہ شوہر اور بیوی دونوں میں سے اگر ایک کفر پہ ہوتا تو پھر شادی نہیں رہ سکتی تھی، تو یا گھر ٹوٹے گا یا اسلام ٹوٹے گا۔ عموماً ایسے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیا فیصلے کرتے ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ ام سلیم کتنی بہادر تھی اور انہوں نے کتنا بڑا رسک بھی لیا۔ لیکن ام سلیم کے قلب و ذہن میں دین حق کی دعوت کا سودا اس حد تک سما چکا تھا کہ وہ دوبارہ شرک و کفر کی طرح پلٹنا ناممکن خیال کرتی تھی۔ چنانچہ ام سلیم اپنے شوہر کو بھی مسلمان ہونے کے لیے بااصرار دعوت دیتی رہی، لیکن وہ بدقسمت کافر ہی رہنے پر مصر رہا، یعنی اس نے اسی پہ اپنے آپ کو رکھا اور مسلمان ہونے سے مسلسل انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان مسلسل اور شدید کشمکش اور کھینچا تانی شروع ہو گئی، جس سے بالآخر تنگ آ کر مالک بن نظر خود ہی ام سلیم سے علیحدہ ہو کر، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی قریب البلوغت تھے اور ان کے دونوں کے لاڈلے بیٹے تھے، ان کو چھوڑ کر شام چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ وہیں مر گیا۔ اب ام سلیم بیوہ ہو چکی تھی۔ چند ماہ کے بعد کچھ افراد نے ان کو نکاح کے پیغام بھجوائے، لیکن ام سلیم نے ہر پیغام میں نکاح کے جواب میں یہی کہا کہ اب میں اس وقت تک دوبارہ نکاح نہیں کروں گی جب تک میرا بیٹا انس بالغ نہیں ہو جاتا۔ یہاں تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پھر بات آگے پلٹ جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ جھگڑا بھرا اور پھر اخیر وہ شوہر چھوڑ کے چلے گئے اور فوت ہو گئے۔ اگر ان کے شوہر کو یہ پتا ہوتا کہ میری موت اتنی قریب ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کی زبان سے جو حق بات سنی تھی اس کو مانتے؟ مان جاتے۔ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کے آخری دنوں تک خاندان، برادری، معاشرے کے رنگ روپ میں اتنا زیادہ مگن رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر اسی لمحے ہمیں موت آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ آپ میں سے شاید کوئی جو بہت امن پسند اور پیس میکر ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اس پہ اعتراض کرے کہ یہ کیسی ایک ایسا دین ہے کہ ام سلیم نے اپنا گھر برباد کر لیا اور اس پہ رہ گئے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دیتی ہوں، کیونکہ آج جب بھی کوئی بندہ اپنے دین میں اسلام کی طرف آتا ہے تو پھر یہ جھگڑا ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی سوسائٹی میں حق آئے اور پھر وہاں شور نہ اٹھے۔ اس پہ ہم اپنی سبیل الجنہ میں کئی جگہ بات کر چکے ہیں، اسی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ مثال ہے کہ یہ شہر ہے، اس میں ہم سب رہتے ہیں اور یہاں پانی بہت صاف آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک خبر پہنچے کہ جو پانی کی نالیاں ہیں جہاں سے ہم پینے کا پانی لیتے ہیں، اس کے اندر گٹر کا پانی شامل ہو گیا۔ اب آپ سوچیے کہ جو ہی یہ بات ہم سب کو پتا چلے گی تو اب لوگوں میں شور اٹھے گا نا۔ اب شور اٹھے گا تو لوگ مختلف گروہوں میں بٹیں گے۔ کچھ کہیں گے کہ ایز سون ایز پاسبل جلدی سے ریپیئر کرواؤ اور ہمیں صاف پانی ملے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایسا کرنے کے اوپر خرچہ بھی آئے گا اور کچھ دن پانی بھی بند رہے گا، قربانی دینی پڑے گی، لیکن وہ اپنی ابدی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قربانی کو کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم سے یہ کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا پی رہے تھے نا آج پتا چل گیا تو کیا ہوا کچھ نہیں ہوتا خاموش رہو بس چپ کوئی سڑک نہ توڑو کچھ نہ کرو کوئی خرابی نہ کرو چپ رہو بس شور نہ کرو اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ گروہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کی بات مان کر خاموشی اختیار کر لیجیے چپ 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 جو کہہ رہے ہو چپ چپ اس کا نقصان کیا ہوگا ایک وقت آئے گا سارے بیمار ہوں گے پیٹ کی بیماریاں بڑھیں گی اور پیٹ خراب ہوں گے اور ہماری نسلیں کمزور سے کمزور ہو جائیں گی پہلا گروہ جنہوں نے ایک دم جرت لی گھر ٹوٹا خرابی ہوئی لیکن ایک ابدی سے تو آ گئی نا بس یہی مثال ہے جب حق آئے گا اور یاد رکھیے میں پہلے بہت دفعہ یہ اپنی کلاسز میں بات کر چکی ہوں آج کی صدی جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس سے پچھلی صدی یہ اسلام کا ریولیوشنری دور ہے ہم اس طرح سے سی سا کے اندر سے گزرتے ہوئے اب نیچے سے اوپر آ رہے ہیں جہاں اسلام کے اندر یہ انقلاب آئے گا گھر ٹوٹیں گے اس وقت آپ اور میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا کوئی پرزا سیدھا نہیں ہے شادیوں کے کرنے سے لے کے شادیوں کے نبھانے سے لے کے گھر بچانے تک کئی غلط فیصلے جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں آئیڈیل سوسائٹی تو وہی ہوتی ہے کہ جہاں بچی کی تربیت بھی خوبصورت ہو بچے کی بھی ہو اور رشتے کے وقت میں پہلا انتخاب جو ہے وہ عورت کا ہو حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے جوان بیٹے کو لے کے کہا کہ میرا یہ بیٹا بہت نافرمان ہے اس کو سمجھائیے اب وہ عمر صاحب جب بات کرنے لگے اس بچے سے جو جوان تھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کی ہر بات مانوں گا صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ بیٹا ہونے کے ناطے میرا کیا حق ہے میرے باپ کے اوپر تو کہا کہ تیرے باپ کے اوپر جو حقوق تھے ان میں پہلا حق یہ تھا کہ تجھے اچھی ماں دیتا نیک عورت سے شادی کرتا پھر دوسرا تیرا حق یہ تھا کہ تیرا اچھا نام رکھتا اور تیسری بات ہے کہ تیری اچھی تربیت کرتا اس جوان بچے نے کہا کہ پھر میں آپ کو بتا دوں میرے باپ نے میرا ان تین میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا پہلی بات یہ ہے کہ اس نے شادی کی نان مسلم سے اور وہ چونکہ نان مسلم تھی وہ اسلام پہ نہیں تھی اس نے مجھے اچھی ماں نہیں دی پھر میرا نام اس نے جوالا رکھا مکڑا جیسے جالے ہوتے ہیں تو میرا نام اچھا نہیں رکھا اور تیسری بات ہے چونکہ میری ماں غیر مسلم تھی اس نے میری اچھی تربیت نہیں کی تو حضرت عمر نے اب اس باپ کی بات سننے بغیر کہا کہ اے شخص تو چلا جا قصور تیرے بیٹے کا نہیں تیرا ہے اور حقیقت ہے یہ آج ہمارے شادیاں کرنے کے جو معیار ہیں اسی میں خرابی ہے اب یہ ام سلیم کا گھر تو ٹوٹنا ہی تھا یا تو پھر ام سلیم کا دین ٹوٹتا یاد رکھیے کہ جب بھی بے جوڑ شادیاں ہوں گی یا گھر ٹوٹے گا یا دین چھوٹے گا تو جب دین پہ غیرت ہوتی ہے تو انسان دین بچا لیتا ہے پھر گھر تو اللہ نے بچانے ہوتے ہیں ساروں کی باتیں غلط مان کے کون سے گھر بستے ہیں اور آپ کہتے ہیں نا کہ اگر دین پہ عورتیں عمل کرنے لگ جائیں تو طلاقیں ہوتی ہیں تو ذرا جا کے ناروے کی پوری لسٹ کھول کے دیکھیں جو طلاقیں ہوئی ہیں اس سال میں کیا وہ ساری دین کی وجہ سے ہوئی ہیں آٹے میں نمک دین ہے باقی سب دنیا ہے تربیت کے وہ اندازی یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن حقیقت ہے کہ گھروں کے اندر کفر پہ بیٹھے رہنا شرک پہ بیٹھے رہنا نمازی نہیں بیس بیس سال عورتیں ایک مرد کے ساتھ رہتی ہیں جبکہ وہ گندی سوچ کا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے طیبات للطیبین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الخبیثات للخبیثون اللہ تعالیٰ نے تو معیار صاف رکھے کفر اور اسلام کے بیچ کی نماز ہے ایک طرف پانچ وقت کی نمازی کا تہجد گزار خاتون ہے دوسری طرف مرد جو نماز نہیں پڑھتے یہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں اور آج میں آپ کو سچ کہوں کہ آج ہماری نسلوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ نسلیں نہیں ہیں بے جوڑ شادیاں لڑکیاں سیدھی سادھی پاکستان سے آتی ہیں یہاں کے لڑکے اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں شادی ہو گئی آتے ہی وہ کہہ دیتے ہیں اماں کے لیے کی تھی تمہیں میرے سے کوئی کام نہیں ہے اور وہ بیٹھی ہیں ان کی اپنی نظریں کہیں باہر گھوم رہے ہیں کر رہے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے ایک آدھا بچہ پیدا ہو گیا اب گھر کے اندر میاں بیوی جب مطمئن نہیں ہے مرد کہیں عورت کہیں تو کیا بچے پیدا کریں گے ایک ٹسل ہے یعنی میں جتنا درد اس موضوع پہ اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں شاید ہی کسی اور موضوع پہ کرتی ہوں جب تک یہ چیز نہیں پوری کریں گے ہم باقاعدہ صحت مند نسلیں نہیں دیں گے اخیر ہوتا کہ ایسی عورتیں پھر بچوں کو الگ لے کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ کوئی نارمل تربیت تھوڑی کر پاتی ہیں بچے کو باپ چاہیے بچے کے لیے باپ کا پیار چاہیے اگر خاص طور پہ لڑکا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو تو باہر کی دنیا میں باپ نے دین سکھانا تھا تو ام سلیم کا یہ واقعہ چھوڑ دیجئے ایسے بیسیوں واقعات موجود ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں دو بیٹیوں کے گھر ٹوٹے تھے اسلام کی وجہ سے کیونکہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ دونوں کو طلاق دی غصے میں دلوائی کہ محمد کی بیٹیاں گھر بھیجو تاکہ ان کو پتہ چل جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے ان دونوں کو کتنا پیارا جوڑ دیا حضرت عثمان غنی کا تو لہٰذا اس پہ آپ اپنے دل کو برا نہ کیجیے ہاں اب مسئلہ کہاں بگڑتا ہے کہ ہمیں حکمت نہیں آتی طریقہ نہیں آتا اگر ایک عورت سمجھدار ہو حکمت والی ہو تین مہینے سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ بے دینی کے ساتھ نہیں رہ سکتی और कोई झगड़ा किए बगैर, कोई लड़ाई किए बगैर, प्यार से मोहब्बत से, ओके भाई आपका ये रास्ता मेरा ये रास्ता, कोई एक लफ्ज़ नहीं उसके खिलाफ बोलेगी। घर टूट जाएगा लेकिन बुराइयां नहीं लोगों के अंदर भेजेंगे, वो बेहतर होगा उससे कि आप 30-40 साल के बाद फिर सोचें कि आप क्या करें। एक सिस्टर मुझे आंखों के सामने आ जाती है कि कहती कि अब तो मैं थक गई हूँ, पहले भी यहाँ अकेले थे, अकेले में मेरे से बदतमीजी करते थे और शराब भी थे, कबाब भी थे, मैं बर्दाश्त करती रही, अब बेटे बड़े हो गए, अब मुझे गम यह है कि कल बहुएं आ जाएंगी तो क्या आप मेरी बहुओं के सामने मुझे ये जलील करेंगे, तो मैं थक गई हूँ। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप कितने साल से उनके साथ हैं, कहती 35 साल से, 35 ईयर्स। मैंने कहा सिस्टर आप इंतहाई ना समझी की बात करती हैं, आपने 35 ईयर्स लेट कर दिया ये फैसला लेना, और कहती ये नहीं बदले थे, ये नहीं बदलेंगे, तो फिर अल्लाह का फैसला भी है। हम हर चीज पे रिस्क ले लेते हैं, दीन पे रिस्क नहीं लेते। शादी करते हैं 10 बातें पूछेंगे, पहले तो अपनी जात ही पूछते हैं, पता नहीं हमारी जात किससे जाके मिलती है, मुझे तो ये कभी नहीं समझ आता, हमें दूसरा समझता क्या जो हम खुद को समझे बैठे, फिर बिरादरी, फिर खानदान, फिर दौलत माल, और नमाज की पूछो, कहते ना ये ना पूछो, बिगाड़ पैदा होता है, खुद ही पढ़ लेंगे। तो बहरहाल ये तकलीफ की बात है, लेकिन उम्मे सुलैम ने रिस्क लिया। अब आप देखिए कि अल्लाह ताला इनको अल्टरनेट कितना प्यारा देता है। वो शौहर तो जाने ही थे, नहीं थे उनके नसीब में हिदायत। इसे एक और भी चीज अमल की लिख लें कि मर्द नादा पे कलाम में दिल फरेब बेअसर, कहते ना कि कट सकता है फूल की पत्ती से हीरे का जिगर, पत्ती से भी हीरा कट जाता है, लेकिन जो मर्द ही नादा है, कुछ कहते हैं मर्द नादा मर्द नाजा, दोनों को कर लें दोनों में मानी बन जाता है कि जिसने नई हिदायत लेनी उसको नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ने इनको उनसे छुड़ा दिया, अब वो गए और उनका इंतकाल हो गया। अब उम्मे सुलैम को और निकाह रहे। यहाँ से उस सोसाइटी की जरा खूबसूरती भी देखिए, आज हमारे कल्चर की बेचारी औरतें जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इसलिए भी रिस्क नहीं लेती। पहली बात है तलाक लेके बैठेंगी तो ठप्पा लग जाएगा, फिर दूसरी बात है आगे से देना किसने, जाएं किधर, माँ बाप भाई बहन कैसे पालेंगे, और तीसरी बात है आगे से रिश्ता ही नहीं होना, बैठी रहो जो भी मिल रहा है। उधर ये नहीं था, इधर घर टूटता था, इद्दत पूरी होती थी, मर्दों के पैगाम आते थे, उनको पता था कि ये एक सेहतमंद सोसाइटी है, तो इनके पास भी रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के बालिग होने तक नहीं करूंगी। चुनाचे जब अनस जवान हुए तो इन लोगों ने आपसे दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इन्हीं में एक अबू तलहा भी थे जो मालिक बिन नजर ही के कबीले के 24 साल नौजवान थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इनको उम्मे सुलैम के शौहर के मरने के बारे में पता चला तो उन्होंने इन्हें पैगामे निकाह भेजा, जिसे उम्मे सुलैम ने महज इनके मुशरिक होने की बिना पर रद्द कर दिया। उन्होंने तो एक मुशरिक से छुटकारा हासिल किया था, अब इस्लाम में रहते हुए किसी दूसरे मुशरिक से किस तरह निकाह कर सकती थी। उम्मे सुलैम ने अबू तलहा जिनका असल नाम जैद बिन सहल था इनसे कहा, अब ये जुमला जो है ना हाईलाइट करने के काबिल है, किसी भी एथियस्ट या किसी बुतपरस्त को अगर तबलीग करनी हो तो मेरे हाल के इससे खूबसूरत जुमले नहीं है। कहती हैं अबू तलहा क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारा माबूद जिसकी तुम परस्तिश करते हो जमीन से उगा है। अबू तलहा ने जवाबन कहा वाकई ऐसा है। याद रहना चाहिए कि अबू तलहा उज्जा नामी बुत की पूजा किया करते थे जो दरअसल साथ साथ उगे हुए तीन दरख्त थे जिन्हें अपनी जहालत की बिना पर मुशरिकीन ने उज्जा का नाम देकर इनकी परस्तिश शुरू कर रखी थी। फिर उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा जब तुम ये बात समझते हो तो फिर तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि तुम किस चीज की पूजा कर रहे हो। ये सवाल सुनकर अबू तलहा ने सिर को झुका लिया और खामोश हो गए। यूं महसूस होता था जैसे वो कुछ सोच रहे हो, ये देखकर कि लोहा गर्म हो चुका है और यही चोट लगाने का सही वक्त है, अब चोट जरूर कारगर साबित होगी। उम्मे सुलैम ने अबू तलहा को कहा मैं तो माबूदे हकीकी और इसके सच्चे रसूल पर ईमान लाती हूँ जबकि तुम बुत परस्त और मुशरिक हो, इसलिए इन हालात में मेरा और तुम्हारा जोड़ कैसे मिल सकता है। फिर उम्मे सुलैम ने अबू तलहा को शिर्क और तौहीद का फर्क और इस्लाम की खूबियों के बारे में इस कदर उमदगी और दलाइल से समझाया कि वो कुछ दिन सोचने के बाद एक दिन उम्मे सुलैम के पास आए और कहने लगे मैं हक का कायल हो गया हूँ और अब तुम्हारा दीन कबूल करने को तैयार हूँ। इस तरह वो मुसलमान हो गए। अब उम्मे सुलैम ने अपने बेटे और सहाबी रसूल अनस से कहा कि तुम अबू तलहा से मेरा निकाह कर दो। उन्होंने तामील इरशाद में इन दोनों का निकाह पढ़ाया। ये निकाह इस लिहाज से बड़ा अजीब और मुनफरिद निकाह था कि जिसे सौतेले बेटे ने अपने सौतेले बाप और हकीकी वालदा का पढ़ाया। निकाह होते ही उम्मे सुलैम ने मेहर माफ कर दिया और फरमाया अब मैं माली मेहर की ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मैं अबू तलहा के इस्लाम लाने को ही मेहर समझती हूँ। इस मुनफरिद निकाह को देखकर बुलंद पाए सहाबी रसूल जैद रजी अल्लाह अन्हु बिन साबित भी मुतासिर हुए। वो फरमाया करते थे इससे बेहतर मेहर न मैंने देखा और न मैंने सुना। अब आप देखिए कि स्टोरी में फिर बहुत सी बातें हैं। पहली बात देखिए कि उस दौर में इस तरह से रिश्ते आसानी से हो जाते थे। शायद कुछ चीजें आपको सुनकर लग रहा होगा कि अच्छा इतना खुला माहौल था कि खुद एक औरत से शादी की बातें मर्द कर रहा है तो फिर आज तो हमारी भी जायज है और हम तो फेसबुक पे जाके बातें करें या matching.com और जाके शादियों पे रिश्ते ढूंढते जाएं। तो याद रखिए कि ये जितने वाकयात हम सहाबा के पढ़ते हैं ना, ये इस्लाम का इंटरफेस था। इंटरफेस क्या होता है, जैसे एक चीज काली थी ना, तो अब आप उसको सफेद कर रहे हैं तो करते करते काला ग्रे होगा, हल्का ग्रे होते होते फिर व्हाइट होता है। जब भी बेदीन माशरे में इस्लाम आएगा, इंटरफेस चलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि ब्लैक को एकदम व्हाइट कर दें। आज हमारे बहुत सारे दीनदार इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि वो लोगों को जंप लगवाते हैं, काले से सफेद हो जाओ, बस ओवरनाइट चेंज आ जाए, खत्म। कल ये थे, आज मुसलमान हो गए, अब तुम तहज्जुद गुजार हो जाओ। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है, ग्रेजुअलिटी का। तो उस दौर में इस तरह की चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में टेम किया गया, पूरे कवानीन दिए गए। सूरत निसा पढ़े तो उसमें निकाह की सारी शरायत है, जिसमें वली की भी शर्त है और बाकी भी चीजें हैं। दूसरी बात है कि शोहर दीदा औरत थी। एक औरत जब एक दफा शादीशुदा जिंदगी गुजार चुकी होती है तो अनमैरिड कुंवारी लड़की की निस्बत उसकी राय की ज्यादा अहमियत होती है। फिर अगली बात इसमें देखिए कि जो इन्होंने उनको तबलीग की, यहाँ तो बहुत मुख्तसर है, मैंने इनका एक और जगह वाक्य पढ़ाया था, तो इसमें इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने कहा, कुछ इस किस्म के अल्फाज मुझे याद है कि अबू तलहा, अगर तुमने पूजना ही है तो उस किसान को पूजो कि जिसने बीज जमीन में डाला, फिर पानी दिया, फिर दरख्त आया आगा, फिर उसको काटे नहीं, कुछ तो किया ना। या तुमने पूजना है तो उस बढ़ई को पूजो कि जिसने उस लकड़ी को तराश कर बुत की शक्ल ढाली। तुम इस लकड़ी के बुत को टालते हो जिसमें कुछ नहीं है। और ये बात की है तो मुझे कई और बातें याद आ रही हैं कि आज के दौर में भी इस तरह से जो लोग बुत की पूजा करते हैं वो कब मायूस होते हैं। एक सिस्टर है हमारे पास यूके में, तो बहुत ही डिप्रेस रहती हैं, कहने को वही है बुत पूजने वाली, तो परेशान रहती हैं। उनसे कॉन्वर्सेशन भी आती भी है, एक जगह दर सुनती हैं, बात खुलती है, दिल भी उनका खुलता है, लेकिन वही बात है ना कि जरूरत नहीं करती। तो अभी चंद वीक पहले उनकी तरफ से मैसेज मिला कि वो बड़ी परेशान है और जो उनको काम था वो नहीं मिला, तो कहती कि आज मैंने अपने सारे बुत जाके कचरे में फेंक दिए, फेंक आई हूं कि मुझे तुझसे आज तक तो कुछ मिला नहीं है। तो मैंने जिनके थ्रू मैं उनसे मिलती हूँ, तो मैंने उन्हें कहा कि देखे ये है असल वक्त अब इनके दिल को पकड़ने का, अल्लाह दिल खोल सकता है। आज भी लोग जानते हैं कि ये बेकार चीज है, ये बुतों को जो पूछते हैं और ये इनके साथ जो कहानियां लेते देते हैं। तो आप देखिए, जिसको अपने हाथ से बनाएंगे आप उसको फिर पूजेंगे तो क्या होगा। अब चलते हैं वापस उम्मे सुलैम की कहानी कि अब ये अबू तलहा से निकाह इनका होता है तो ये कैसा वक्त रहा। इसमें असल में वाकया माओं के लिए बहुत बड़ा, और वो क्या है, और यहां से एक मसला भी आपने समझ लिया कि बेटा भी माँ का निकाह पढ़ा सकता है। आप कहते हैं ये भी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए बेटा है, जवान है, एक तो वो वली भी बन सकता है माँ का और निकाह भी पढ़ा सकता है, बाप भी निकाह पढ़ा सकता है। तो आप कहेंगे फिर ये सारे मौलवी साहब किधर जाएंगे जिनको हमने रखा इन मौकों के लिए, को मर जाए तो बेचारे जनाजा पढ़ा दें, निकाह पढ़ाए। मौलवियों की जरूरत ही नहीं रहेगी जब सच्चा इस्लाम होगा, यकीन करें। या आप मेरे जैसे मौलवियों को दर्स के लिए बुलाते हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं रहेगी जिस दिन सारी सोसाइटी दीन पे आ जाएगी। कोई जरूरत ही नहीं लंबे चौड़े वाज और दरसों की कि आपको बुलाएं और पढ़ाएं। मिल्लत इस्लाम का हर बंदा, हर मुसलमान जो होता है ना, औरत और मर्द, वो इस्लाम का इतना मुकम्मल नमूना होता है कि आपको अल्लाह के नबी के दौर में कोई दरसो तदरीस नहीं मिलेंगे। ये जैसे हम आपको प्यार से बुला रहे हैं कि आइए बच्चों की तरबियत सीखिए, अल्लाह के नबी के दौर में कभी इसकी जरूरत नहीं थी पड़ी। जब खुद ही हालात ऐसे होते हैं तो लोग वैसे ही होते हैं। अल्लाह के नबी ने कभी लोगों को बुला के नहीं कहा कि अल्लाह के बंदो नमाजें पढ़ा करो। ये तो आज के इस दौर के तोहफे हैं ना, कि हम जैसे लोगों की भी बड़ी वैल्यू है क्योंकि दूसरे लोग कम करते हैं ये काम। लेकिन आप देखिए कि बेटा निकाह पढ़ा रहा है, अच्छा अब उसने अब गैरत का मामला समझा, उसको हया आई, माँ ने कहा शादी करे। हम ऐसे मौजूद पे क्यों इस तरह बेकार तरीके से शो ऑफ करते हैं। अगर किसी की शादी होती है बुढ़ापे में तो आप बताइए, क्या शादी इंसान की बेसिक जरूरत नहीं है, तन्हाई होती है, बहुत कुछ है, तो इसमें अमल की बात है। अगर किसी का बाप फौत हो चुका है या किसी की माँ अकेली रहती है और आप यंग हैं, आपका फर्ज बनता है कि जैसे आप अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आप अपनी माँ के लिए भी ढूंढें। यकीन करें ये सरासर इस्लाम है।